اسلامی بیداری میں خواتین کا کردار بے نظیر ہے، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا خطاب۔ ہر ملک کو اپنی دفاعی پالیسی خود معین کرنے کا حق ہونا چاہیے، اسلحے سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس میں ایرانی سفیر کی تقریر۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں عوام کے مظاہرے، آل سعود کے مظالم کی مذمت اور جمہوری حقوق کی بحالی کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اسلامی بیداری کی عظیم تحریک میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
خواتین اور اسلامی بیداری کے عالمی کانفرنس میں شریک ایرانی اور غیر ملکی نمائندہ خواتین نے بدھ کو تہران میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی بیداری کی عظیم تحریک میں خواتین کا کردار بے مثال ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسے دوام بخشنے میں خواتین کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر فرمایا کہ اسلامی بیداری کی مبارک تحریک کے دوران خواتین کے کردار کی تقویت اور اس کا دوام بلا شبہ مسلم اقوام کے لیے برکتوں کا باعث بنے گا۔ آپ نے تہران میں اسلامی بیداری کانفرنس میں دنیا کے 85 ملکوں کی دانشور خواتین کی شرکت کو مسلم خواتین کی ایک دوسرے سے شناسائی کا بہترین موقع قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس اجلاس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شناسائی اور دوستی کو مسلم خواتین کے تشخص کے احیاء کا راستہ ہموار کرنے کا پیش خیمہ بننا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مسلم خواتین کو اسلامی تشخص سے دور کرنے کی غرض سے کی جانے والی مغرب کی 100 سالہ پیچیدہ اور ہماگیر کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دانشور مسلم خواتین کی جانب سے اپنے تشخص کے احیاء کے لیے کی جانے والی کوشش مسلم امہ کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ مسلم خواتین میں تشخص، آگاہی اور بصیرت کا احساس اسلامی بیداری کی تحریک اور امت مسلمہ کی سربلندی کی جد و جہد میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ قائد انقلاب اسلامی نے عورت کے بارے میں مغربی طرز فکر کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے فرمایا، مغرب والے اپنی ثقافت کی گہرائیوں میں خواتین کو ایک شے اور مرد کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے تمام وسائل صرف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس یہ ہے کہ مغرب نے خواتین کے بارے میں اس طرح کی لچر، ناقص اور گمراہ کن طرز فکر کو آزادی کا نام دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے قتل و غارت گری، ملکوں کی لوٹ مار، فوج کشی اور جنگ کو حریت پسندی، انسانی حقوق اور جمہوریت جیسے فریب کارانہ نام دے رکھے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے خواتین کے بارے میں اسلامی نظریات کو مغربی طرز فکر کے بالکل برخلاف قرار دیا اور زور دے کر فرمایا کہ اسلام خواتین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو ترقی و پیش رفت کا باعث سمجھتا ہے اور اس کے لیے جداگانہ، علیحدہ اور مستقل تشخص کا قائل ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتیں جن میں امریکہ اور اسرائیل سر فہرست ہیں، اسلامی بیداری کی عظیم تحریک کے سامنے حواس باختہ ہو گئی ہیں اور اسے روکنے اور اپنے مقاصد کے لیے منحرف کرنے کے غرض سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مسلم اقوام ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور میدان عمل میں بھرپور طریقے سے موجود رہیں تو سامراجی طاقتوں پر ان کی کامیابی یقینی ہے، کیونکہ تمام سامراجی طاقتیں مل کر بھی ایمانی طاقت کو زیر نہیں کر سکتی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوری ایران کو فلسطین کی حمایت ترک کرنے پر مجبور کرنے کی غرض سے مغربی ملکوں کی ناکام کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایران شیعہ اور سنی اختلافات جیسی منحرف باتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے علاقے میں انسانیت کے دشمن اپنے طویل المیعاد مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے تہران میں مجلس اعلی اسلامی کے سربراہ عمار حکیم سے ملاقات میں کہا کہ علاقے میں سامراجی طاقتوں کا مقصد صہیونی حکومت کو نجات دلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سامراجی طاقتوں نے کبھی عوامی حکومت کو پسند نہیں کیا اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ قوموں پر اپنا تسلط باقی رکھیں۔ صدر مملکت نے علاقائی حالات کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जब साम्राज्य निजाम तबाही की सम पढ़ रहा है और अपनी तसल्लुत पसंदी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, ऐसे में खुद मुख्तार और इंसाफ पसंद मुल्कों को चाहिए कि वो साम्राज्य ताकतों को ऐसा करने की इजाजत न दें। सदर अहमदी निजात ने जोर देकर कहा कि इलाके की कौमों और हुकूमतों को होशियार रहना चाहिए और उन्हें अपनी पूरी तवानाई आजादी और खुद मुख्तारी और इज्जत और इंसाफ के हुसूल के लिए सर्फ कर देना चाहिए। अक्वामे मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा है कि दुनिया के हर मुल्क को बैरूनी दबाव और मुदाखलत के बगैर अपनी दिफाई हिकमत अमली तैयार करने का हक दिया जाना चाहिए। मोहम्मद खजाई ने असलहे की तजारत के मुआहदे के बारे में आलमी इजलास से खिताब करते हुए इस बारे में ईरान के मौकिफ की खुलकर वजाहत की। असलहे की खरीद और फरोख्त के मुनज्जम शक्ल देने की गरज से होने वाले इस इजलास से खिताब करते हुए ईरान के सफीर ने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा की शिक 51 के तहत हर मुल्क के जायज दिफा के हक को इस मुआहदे में पूरी तरह से महफूज रखा जाना चाहिए। ईरान के सफीर ने वाज़ेह किया कि मुआहदे के रुकन ममालिक को इस बात का अहद करना चाहिए कि वो भी हर मुल्क के मुसलमा सिक्योरिटी और दिफाई मामलों के खिलाफ यकतरफा इकदाम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इस मुआहदे की स्टीयरिंग कमेटी का रुकन मुंतखब हो गया है, जिस पर सहयूनी हल्कों और मगरबी ज़राए इब्लाग ने बड़ा वावेला मचाना शुरू कर दिया है। तकरीबन 40% रिवायती असलहा अमरीका में जबकि 31% दीगर यूरोपीय मुल्कों में तैयार किया जाता है। सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में आले सऊद के जराइम के खिलाफ आवाम के मुजाहरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
सऊदी अरब में शाही हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मुल्क के मशरकी इलाकों के शहरियों ने अल कतीफ और अवामिया शहर में मंगल और बुध की दरमियानी शब भी मुजाहरे किए हैं। मुजाहिरीन आम शहरियों के खिलाफ सऊदी सिक्योरिटी अहलकारों के पुरतशद्दुद इकदामात की मजम्मत में नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन मुल्क में जमहूरियत का क्याम और शाही खानदान की सरनगुनी का भी मुतालबा कर रहे थे। और एक इतला यह है कि इतवार के रोज सरकर्दा आलम दीन आयतुल्ला नम्र बाखरा नम्र की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरों में शरीक लोगों पर सिक्योरिटी अहलकारों की फायरिंग में शहीद होने वाले दो अफराद की तदफीन कर दी गई है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शरीक थे। आयतुल्ला नम्र की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मशरकी इलाकों के लोग पुरअम एहतजाज कर रहे थे कि सऊदी सिक्योरिटी अहलकारों ने उन पर बराह रास्त फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 3 पुरअम शहरी शहीद हो गए थे। सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में गुज़िश्ता 1 साल से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, ताहम आयतुल्ला नम्र पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्स के हमले और गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों में शिद्दत पैदा हो गई है। दूसरी जानब सऊदी अरब की सूरतहाल कशीदा हो जाने के बाद CIA के सरबराह ने इस मुल्क के वली अहद से मुलाकात और गुफ्तगू की है। सरकारी टीवी के मुताबिक CIA के सरबराह डेविड पेट्रोयस ने जद्दा में वली अहद सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सूरतहाल और रियाज और वाशिंगटन के दरमियान तआवुन बढ़ाने की राहों का जायजा लिया गया। CIA के सरबराह ने इससे कल पीर के रोज मुल्क के करीबुल मर्द बादशाह मलिक अब्दुल्ला से भी मुलाकात और गुफ्तगू की थी। दरी असना हरमैन नामी वेबसाइट ने अमरीकी और सऊदी हुकाम के दरमियान खुफिया और जाहिरी मुलाकातों का हवाला देते हुए लिखा है कि ये मुलाकातें सऊदी अरब की अंदरूनी सूरतहाल के बारे में अमरीका को लाहक परेशानी की अलामत हैं। सरजमीन हिजाज के शहरी मुल्क में सियासी असलाहत, आजादी इजहार का हक दिए जाने, सियासी कैदियों की रिहाई और मजहबी बुनियादों पर रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक के खात्मे का मुतालबा करते चले आ रहे हैं।
लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बिर्री ने कहा है कि इस्लामी मुजाहमती कुव्वत ही लबनान के खिलाफ इसराइल के गासिबाना कब्जे के इकदाम का जवाब दे सकती है। लबनान की अल इंतकाद वेबसाइट ने लिखा है कि पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बिर्री ने कहा है कि इस्लामी मुजाहमत ही लबनान के खिलाफ सहयूनी हुकूमत के जारहाना अजायम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, इसीलिए लबनान के अवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस्लामी मुजाहमती कुव्वत को निहत्ता कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लामी मुजाहमत के हक में नहीं है वो गासिब सहयूनी हुकूमत के गासिबाना कब्जे को खत्म करने का रास्ता भी बयान करें। लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि सहयूनी हुकूमत लबनान की अर्जी सालमियत और इकतदार आला की बदस्तूर खिलाफवर्जी कर रही है और अब भी उसके कब्जे में लबनान के काफी इलाके और कुदरती जखायर हैं। उन्होंने कहा कि अरब हुकूमतें इस चैलेंज का जवाब देने की तवानाई नहीं रखती। नबी बिर्री ने कहा कि अरब हुकूमतें सिर्फ अपने मुल्कों में बेदारी की तहरीकों को ही कुचलना चाहती हैं। लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि लबनान की सरजमीन का एक बालिश भी या इसके कुदरती जखायर का मामूली हिस्सा भी सहयूनी हुकूमत के कब्जे में छोड़ दिया जाना किसी भी लिहाज से जायज नहीं है। उन्होंने इससे पहले लबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती से मुलाकात की थी। इससे पहले लबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती ने भी कहा था कि हिजबुल्ला के हथियारों का मकसद सहयोनी हुकूमत की तौसी पसंदी का मुकाबला करना है और लबनान की सरजमीन का एक बड़ा इलाका इसी ग्रोह की कोशिशों से आजाद हुआ है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि हिजबुल्ला के हथियार लबनान की अर्जी सालमियत और कौमी इकतदार आला के लिए जरूरी हैं। सहयोनी फौजियों ने गर्ब उर्दन में हमला करके कम से कम 14 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। फलस्तीनी खबरसा एजेंसी वफा ने बुध को रिपोर्ट दी है कि इसराइली फौजियों ने किलकिलिया के मशरक में वाकई गांव पर हमला करके 9 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोनी फौजियों ने इसी तरह अल खलील शहर में भी हमला करके 5 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। सहयोनी फौजियों ने फलस्तीनियों को गिरफ्तार करने के बाद बासपोर्ट्स के लिए उन्हें फौज की सिक्योरिटी मराकज में मुंतकिल किया है। दूसरी जानब सहयोनी हुकूमत के खुफिया एजेंसी के एहलकारों और इसराइली फौजियों के मुश्तरक यूनिट ने मस्जिद अल अक्सा के जनूब में वाक़ सिलवान बस्ती के अलहारा महल्ले में हमला किया है। ऐनी शाहिदों का कहना है कि सहयोनी फौजियों ने तरबियती कुत्तों के हमरा अलहारा महल्ले में फलस्तीनियों के मुतादिद रिहायशी मकानात पर हमला किया, जिससे फलस्तीनी बच्चों और खवातीन में खौफहराज का माहौल पैदा हो गया। वाज़ह है कि सहयोनी हुकूमत मुख्तलिफ बहानों से फलस्तीनियों के रिहायशी इलाकों पर हमले करती रहती है, जिसके दौरान वो फलस्तीनियों को गिरफ्तार करके जेलों में मुंतकिल कर देती है। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम की वसी मुखालफत को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ ये कि नेटो की सप्लाई बहाल रखी है बल्कि इस सिलसिले में अपना तआवुन बढ़ा दिया है।
हुकूमत पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई लाइन की बहाली के खिलाफ होने वाले वसी मुजाहिरों की परवाह न करते हुए अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज के लिए सप्लाई के लिए कंटेनरों के लिए जगह की गुंजाइश दुगनी कर दी है। पाकिस्तानी जराए इब्लाग के मुताबिक तोरखम बार्डर पर कस्टम के हुक्काम का कहना है कि नेटो के लिए पहले जितने कंटेनर जाया करते थे अब मस्कुरा गुंजाइश उसकी दोगुना हो गई है। पाकिस्तान के कस्टम हुक्काम का कहना है कि इस इकदाम का मकसद अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज के लिए सामान्य रसद की तरसील में तेजी लाना और सरहदी इलाकों में ट्रकों को जमा न होने देना है। हुकूमत का ये इकदाम एक ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान के अवाम के मुख्तलिफ तबकात और सियासी और मजहबी गिरोहों ने नेटो सप्लाई को दोबारा बहाल करने के हुकूमती फैसले पर शदीद एहतजाज किया है और तवक्को है कि आइंदा हफ्तों के दौरान इसी तरह के मजीद एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किए जाएंगे। खबरों में यह भी कहा गया है कि एक पाकिस्तानी वकील जफरउल्लाह खान ने लाहौर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करके नेटो सप्लाई दोबारा बहाल करने के हुकूमती फैसले को मुल्क के कवानीन के खिलाफ फर्जी करार दिया है और अदालत से कहा है कि वो नेटो सप्लाई फिर से बंद करने का हुक्म जारी करे। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि नेटो सप्लाई बहाल किए जाने से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाईओं में तेजी आ जाएगी। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में तैनात गैर मुल्की फौजें हमारी सरजमीन से ही इन हथियारों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके हमारे ही मुल्क के खिलाफ उनका इस्तेमाल करती हैं। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में सलाला चेक पोस्ट पर अमरीका और नेटो के फौजी हेलीकॉप्टरों के हमले के बाद जिसमें 24 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे नेटो के लिए अपनी जमीन से सप्लाई रोक दी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि यह सप्लाई उसी वक्त बहाल की जाएगी जब अमरीका इस हमले पर माफी मांग लेगा और ड्रोन हमले बंद कर देगा, मगर अमरीकी हुक्काम ने न तो हमले पर माफी मांगी और न ही उसने ड्रोन हमले ही बंद किए। फिर भी नेटो की सप्लाई लाइन हुकूमत पाकिस्तान ने बहाल कर दी है।
हिंदुस्तानी हुक्काम का कहना है कि रियासत जम्मू कश्मीर में इसराइली जासूसों के एक ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सयाहों के भेस में जासूसी की सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर की कुलजमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीरवायज उमर फारूक ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में सयाहत के बहाने आने वाले इन इसराइली सयाहों और इसराइल की खुफिया तंजीम मूसाद के दरमियान रवाबित पाए जाते हैं। खबरों में यह नहीं बताया गया कि कितने इसराइली जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एक मकामी अखबार ने लिखा है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने हाल ही में कुछ ऐसे साजो सामान भी जब्त किए हैं जो इसराइली साख्त के हैं और उन्हें जम्मू और कश्मीर में हमले और साजिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ने एक इज्तिमा में इंदो मिल की जमीन बाबा साहब अंबेडकर के नाम मखसूस करने का मुतालबा किया है। तफसीली रिपोर्ट के साथ मुंबई से अली अब्बास वफा।
इंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन बाबा साहब अंबेडकर के नाम से मंसूब करने, महंगाई और बदनवानी के खिलाफ आरपीआई कारकुनों ने मुंबई के तारीखी आजाद मैदान में मरकजी और रियासती सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान को सख्त तनकीदों का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम और वजीर आला की यकीन दहानी के बाद भी इंदो मिल की जगह बाबा साहब के मुजस्मे से आज तक मंसूब नहीं की गई और अगर वजीर आजम इस पर जल्द फैसला नहीं लेंगे तो आरपीआई कारकुनान खून बहाने के लिए तैयार हैं और पूरे हिंदुस्तान भर में चक्का जाम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी रियासती और मरकजी सरकार की होगी।
आज हम मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी निर्णय ले लो, नहीं तो कुर्सी खाली करो।
इस एहतियाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में आरपीआई कारकुनान मौजूद थे जबकि रियासती और मरकजी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। चलिए बात वफा शहर आलमी नेटवर्क मुंबई।
रूस के फौजी हुकाम का कहना है कि वो मुल्क में S-400 नामी पांचवां मिसाइल सिस्टम नस्ब करने वाले हैं। रूस की फजाइये के नायब सरबरा एयर मार्शल पावल कोराचिनकॉफ ने कहा कि रूसी फौज रवां साल के अख्तितम तक S-400 नामी एक और मिसाइल सिस्टम तैनात कर देगी। जनरल पावल कोराचिनकॉफ ने यह नहीं बताया कि सिस्टम किस मकाम पर नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इतलात खुफिया हैं और रूसी वजारत दिफा इसकी तैनाती के बारे में रवां साल के आखिर तक कोई फैसला करेगी। S-400 नामी चार मिसाइल सिस्टम पहले ही रूस में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं जिनमें से दो मॉस्को के मजाफात में, एक बहरे बाल्टिक में और एक रूस के इंतहाई मशरकी इलाके नाखुदका में नस्ब किया गया है। वाज़ह है कि मशरकी यूरोप में अमरीका की तरफ से एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब किए जाने के मनसूबे के बाद की खबरों के बाद रूस ने अपने मिसाइल सिस्टम को तैनात करने के मनसूबे को मजीद तेज कर दिया है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलैंड ने मंगल को बरतानिया के सरकारी दौरे पर ऐसी हालत में लंदन का दौरा किया है कि जब बहुत से मामलों पर बरतानवी वजीर आजम के साथ उनके इख्तलाफात बरकरार हैं।
फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलैंड और बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने मंगल के रोज होने वाली मुलाकात में यूरोप के इकतसदी बहरान पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब लंदन और पेरिस के दरमियान यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों के बारे में पाए जाने वाले इख्तलाफात की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। यूरोपीय यूनियन के दीगर मुल्कों के साथ इकतसादी माहदों के बारे में नए सिरे से रेफरेंडम कराए जाने की तजवीज़ ने फ्रांसीसी हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फ्रांस की बाएं बाजू की हुकूमत माशी के फैशवारी के मुकाबले में इकतसादी शरह नमू में इजाफे की पॉलिसी पर यकीन रखती है। बरतानवी वजीर आजम ने जून में होने वाले ग्रुप 20 के इजलास में फ्रांस के नए सद की मालियाती तजावीज का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर फ्रांस ने सबसे ज्यादा आमदनी वाले लोगों से 75% टैक्स वसूल करने की पॉलिसी जारी रखी तो हमको बरतानिया आने वाले फ्रांसीसी ताजरों के लिए रेड कार्पेट बिछाना पड़ेंगे। वो हमारे मुल्क में टैक्स अदा करें, सर्विस, तालीम और गरज जो चाहें हम देने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा फ्रांस के सदर की अफगान पॉलिसी भी उनकी सोशलिस्ट हुकूमत और बरतानिया की खदामत परस्त हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात का सबब बनी हुई है। बरतानिया के वजीर आजम ने फ्रांस में सदारती इंतखाबात की मुहिम के दौरान साबिक सदर निकोला सार्कोजी की खुलकर हिमायत की थी। फ्रांस के इंतखाबी मुहिम के दौरान जब फ्रांस व ओलैंड ने लंदन का दौरा किया था तो वो लेबर पार्टी के सदर ही से मुलाकात कर पाए थे और डेविड कैमरॉन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। फ्रांस व ओलैंड ने सन 2013 में अपने फौजियों को अफगानिस्तान से निकालने का ऐलान कर दिया है जबकि डेविड कैमरॉन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के नए शेड्यूल पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। बहरहाल फ्रांस व ओलैंड और डेविड कैमरॉन के दरमियान मंगल के रोज होने वाली मुलाकात अहम तनाजात के हल में मददगार साबित नहीं हो सकी। फ्रांस के सदर ने इस मुलाकात में कहा कि यूरोपीय मुल्कों को उनकी सलाहियतों के तनाजु में देखा जाना चाहिए क्योंकि हर मुल्क अपनी रफ्तार के मुताबिक आगे बढ़ सकता है और इसी के जरिए बाहमी एतमाद और मजबूत ताल्लुकात की जानिब कदम बढ़ाया जा सकता है। बरतानिया के वजीर आजम ने भी लंदन और पेरिस के दरमियान करीबी इकतसादी ताल्लुकात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि फ्रांसीसी कंपनियों ने 1,80,000 बरतानवी शहरियों को मुलाजमत फराहम कर रखी है और चीन, हिंदुस्तान, जापान और तुर्की के मुकाबले में फ्रांस के लिए हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। डेविड कैमरॉन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की तकवियत तमाम अरकान के लिए सूदमंद है ताहम ये बात जोर देकर कही कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात की मौजूदा सतह से खुश नहीं है और इसके ढांचे में इस्लाहात का ख्वाह है।
और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर पेश खिदमत हैं। इस्लामी बेदारी में खवातीन का किरदार बेनजीर है, कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई का खिताब। हर मुल्क को अपनी दिफाई पॉलिसी खुद मुयन करने का हक होना चाहिए, اسلحے سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس میں ایرانی سفیر کی تقریر۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں عوام کے مظاہرے، آل سعود کے مظالم کی مذمت اور جمہوری حقوق کا مطالبہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔